Thank you. हंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभयचरणारविन्द भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम प्रातः कालीन कक्षा की युगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद के निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बो।
एक याचना है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा सकते हैं?
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध चतुर्दशवा अध्याय श्लोक संख्या चत्वारिंशत् चालीसवां श्लोक। श्रोतागण सामूहिक रूप से पश्चात अनुवर्तन करेंगे।
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके
नारायणं
नमस्कृत्य
नरं
चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासम्
ततो जयमुदीरये। ततोर्चायां हरिं केचे
ततोर्चायां हरिं केचे
सन्
संश्रद्धाय सपर्याय संश्रद्धाय सपर्याय उपासत उपास्ताते उपासते उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम् नार्थदा पुरुषद्विषाम् ततोर्चायां हरिं केचे संश्रद्धाय सपर्याय उपासते उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्
ततोचार्यां हरिं केचि
ततोचार्यां हरिं केचि
संश्रद्धाय सपर्याय
संश्रद्धाय सपर्याय
उपासते उपास्तापि
उपासते उपास्तापि
नार्थदा पुरुषद्विषा
नार्थदा पुरुषद्विषा
ततोचार्यां हरिं केचि
संश्रद्धाय सपर्याय उपासते उपास्तापि
उपासते उपास्तापि
नार्थदा पुरुषद्विषा
नार्थदा पुरुषद्विषा ततोचायां हरिं केचि संश्रद्धाय सपर्याय
उपास्ते उपास्तापि
उपासते उपास्तापि
नार्थदा पुरुषद्विषा
नार्थदा पुरुषद्विषा
मातागण शब्दार्थ ततः तत्पश्चात् अर्चायाम अर्चा विग्रह या देवता में हरिम जो भगवान है केचित कोई संश्रद्धाय श्रद्धा सहित सपर्याय आवश्यक साज सामान सहित उपासते पूजा करता है उपास्ता अपि पूजा करते रहने पर भी न नहीं अर्थदा लाभप्रद पुरुषद्विषाम भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करने वालों के लिए
भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करने वालों के लिए
अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कभी कभी नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी साज सामग्री अर्पित करता है और वह वास्तव में भगवान की पूजा अर्चा विग्रह के रूप में करता है, लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। तात्पर्य अर्चा विग्रह पूजा नवदीक्षित भक्तों की शुद्धि के लिए विशेष रूप से है, किंतु वास्तव में उपदेश देना प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में कहा गया है न च तस्मान् मनुष्येषो कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। यदि कोई भगवान से मान्यता चाहता है तो उसे भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा करता है उसे प्रचारकों का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, अन्यथा केवल अर्चा विग्रह की पूजा करते रहने से वह भक्ति की निम्न अवस्था में पड़ा रहेगा।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 सर्वप्रथम भगवान श्री श्रीमद राधा माधव देव के अतिशय करार्चित पाद पद्मों में तत्परिकर श्री ललिता देवी श्री विशाखा देवी प्रभृति अष्ट सखी वर्ग एवं श्री रूप रति मंजरी प्रभृति मंजरी वर्ग सहित अतिशय दैन्यतापूर्वक काकुती मयतापूर्वक प्रणाम करने के साहचर्य रूपी कार्य में उसी श्री कृष्ण नाम एवं श्री कृष्ण प्रेम की वन्या का कलयुग की प्रथम संध्या में श्री धाम नवद्वीप में श्री शची सूनु के रूप में प्रकट होकर अभूतपूर्व रूप से त्रिलोकी में उस वन्या को प्रवाहित करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं उनके भी सुललित पादाम्बुज द्वयों में तत्परिकर श्री धाम वृंदावन स्थित श्री षड गोस्वामी पादों सहित नतमस्तक होने के साथ ही साथ अनंतर में उसी श्री कृष्ण भावना सुधारूपी अलकनंदा के प्रवाह का सांप्रत काल में विश्वव्यापी स्तरीय पुनः विस्तारित प्रसारण प्रचारण प्रवर्धन इत्यादि करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के भी वंदनीय चरणाम्बुजों में प्रणत होते हुए एवं उपस्थित वैष्णव श्रोता समुदाय का भी यथा योग्य तारतम्य भेद से अभिवंदन करते हुए आज श्रीमद भगवद गीता रस सुधा आस्वादन रूपी विषय की ओर अग्रसर होते हैं। बढ़िया लगता है,
एक दो हमको भी देखे जाना ही है।
ठीक है, ठीक तो श्रीमद भागवतम के इस वर्तमान प्रसंग में देवर्षि नारद सुरर्षि नारद वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के विषय में उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उन नियमों को स्थापित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भगवद गीता में कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। चार प्रकार के जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र तथा चार प्रकार के जो आश्रम है अर्थात जीवन की अवस्थाएं हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये समस्त चार आश्रम एवं चार वर्ण इनकी उत्पत्ति मेरे ही द्वारा हुई है और ये गुण एवं कर्मों के ऊपर आधारित है और इनकी उत्पत्ति करने के पश्चात भी मैं इनके प्रभाव में नहीं आता हूं, मैं इनमें आबद्ध नहीं होता हूं, मैं इनमें लिप्त नहीं होता हूं। तो ये जो चातुर वर्ण है और जो चतुर आश्रम है ये साक्षात भगवान की संतान स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण ही इनके सृष्टिकर्ता है और इन्हीं वर्णाश्रम धर्मों का निरूपण इस सप्तम स्कंध के चतुर्दशवें चौदहवें अध्याय में श्री नारद महामुनि श्री युधिष्ठिर के प्रति राजसूय यज्ञ के पश्चात इंद्रप्रस्थ में कर रहे हैं। तो इस वर्तमान के प्रकरण में श्री नारद महामुनि ने विवेचना की कि किस तरह से त्रेता युग में जबकि ईर्ष्या का प्रादुर्भाव हुआ तब से भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसकी पूजा का प्रारंभ एवं जो यज्ञ है उन यज्ञों की करणीयता का प्रादुर्भाव हुआ। सत्य युग में भगवान कपिल देव ने अवतीर्ण होकर जिस प्रकार से तृतीय स्कंध में माता देवहूति को अष्टांग योग एवं चतुर्भुज विष्णु नारायण रूप के ऊपर ध्यान का जो उपदेश दिया था उस ध्यान विधि के अनुसार तो सत्य युग में समस्त वैष्णव हरिभक्त गण भगवान की उपासना करते थे, लेकिन अब त्रेता युग के प्रारंभ से ही अर्चा विग्रह की उपासना एवं विविध प्रकार के यज्ञ यागादियों की करणीयता कर्तव्यता इत्यादि प्रस्थापित होने लगी। कैसी उपस्थिति होने, कैसे संयोग संयोगों की उपस्थिति होने पर, कैसे वातावरणों की उपस्थिति होने पर, तो उस वातावरण की चर्चा करते हुए श्री नारद महामुनि ने कहा कि दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणां अवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषो हरेरर्चा क्रियायैक विधिः कृता। जब कविगणों ने देखा, जो सुनिपुण विद्वान मनीषी मुनि और ऋषिगण थे, उन्होंने जब देखा कि सत्ययुग की भांति अब त्रेता युग में समस्त जीवों का जो अंतःकरण मात्सर्य रहित था, स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या रहित था, वैसा अंतःकरण अब जीवात्माओं का नहीं रहा है। अरे यहां तक कि जो ब्राह्मण है वे भी परस्पर, मिथः का अर्थ होता है परस्पर, एक दूसरों की ईर्ष्या करने लगे हैं, और जो वैष्णव गण है वे भी परस्पर एक दूसरों की ईर्ष्या करने लगे हैं, एक दूसरों की अवज्ञा करने लगे हैं। अवज्ञा का अर्थ है कि यदि यह विचारधारा मन में रखते कि हर प्राणी मात्र में, हर जीव में भगवान नारायण का परमात्मा रूप से, क्षीरोदक्षायी विष्णु रूप से, चतुर्भुज रूप से, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम प्रादेशम, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, इस प्रकार से जो भगवान विष्णु चतुर्भुज धारण करके, जिनकी क्षीरोदक संज्ञा है, वे अंगुष्ठ मात्र आकार धारण करके हृदय के प्रादेश मात्र में निवास करते हैं प्रत्येक जीव में, और इस प्रकार की यदि विचारधारा रखते तो किसी भी जीव की अवज्ञा न करते, किसी भी जीव का अनादर असम्मान इत्यादि न करते। लेकिन अब यह विचारधारा धीरे धीरे क्रमशः या तो क्षीण होती जा रही है या तो प्रभावहीन होती जा रही है, और कलयुग में तो यह विचारधारा संपूर्ण रूप से लुप्त हो गई है। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता के पंचम अध्याय में कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है, जो वास्तविक आत्मज्ञान और विवेक बुद्धि से संपन्न जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, इसीलिए ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वैसा ब्राह्मण एक गाय में, एक हस्ती में, एक चांडाल में, और एक सन्यासी में, और एक ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं देखता, उन समस्त में परमात्मा को विराजमान देखता है, समस्त को आदर प्रदान करता है। यद्यपि आदर प्रदान करने की जो विधि है, व्यवहार है, उसमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन फिर भी हर प्राणी मात्र में श्री कृष्णचंद्र का वास मानकर उनका सम्मान करता है। तो इस प्रकार की जब समता न रही, तभी ईर्ष्या का भाव, मात्सर्य का भाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की जो समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, इस प्रकार की समता का जब ह्रास हुआ ब्राह्मणों में, वैष्णवों में, द्विजातियों में, आर्यों में, उसी समय कविगणों ने, मनीषी गणों ने, विद्वान भक्त समुदाय ने यह निर्णय लिया, यह विचार किया, विशेष करके यहां पे जो कवि भी कृता, जो कहा गया है कि कवियों के द्वारा निर्णय लिया गया, ये कवि कौन है, ये द्वादश महाजन ही ये कवि है, क्योंकि ये द्वादश महाजन ही इस ब्रह्मांड के जितने भी धार्मिक निर्णय हैं उनको लिया करते हैं। तो इन द्वादश महाजनों ने यह निर्णय लिया और उन्होंने यह विचार किया कि इस समय त्रेता युग में भगवान श्री हरि की अर्चा विग्रह की जो पूजा है और जो यज्ञ यागादियों का संपादन है वही अधिक श्रेयस्कर है, उस ध्यान की अपेक्षा। इसीलिए ऐसे जो कनिष्ठ भक्त है, ऐसे कनिष्ठ भक्तों का लक्षण क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में विभिन्न शास्त्रों से उद्धरण देते हैं। तो इन कनिष्ठ भक्तों का जो लक्षण है वह श्रीमद् भागवतम के एकादशवें स्कंध में बताया गया है। अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते न तद् भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं, वे यद्यपि वैष्णव हैं, वे यद्यपि भक्त हैं, क्योंकि वैष्णव का लक्षण क्या किया है, पद्म पुराण के उत्तर खंड में भगवान वेद व्यास कहते हैं
कि गृहीत विष्णु दीक्षाक विष्णु पूजा परो नर वैष्णवो विहितो भेग्यैः इतरोस्माद वैष्णवः।
पद्म पुराण के उत्तर खंड में श्री वेद व्यास कहते हैं कि गृहीत विष्णु दीक्षा को जिस किसी भी जीव ने विष्णु की दीक्षा ग्रहण कर ली हो, फिर चाहे वह दीक्षा मानव योनि में ग्रहण की हो चाहे मरकट योनि में ग्रहण की हो, ऐसे अनेक सारे उदाहरण प्राप्त हैं कि मरकट योनि में भी बहुत सारे भक्त हुए हैं भगवान के अनेक युगों में, विशेष करके श्री हनुमान श्री सुग्रीव इत्यादि, और इस कलयुग में भी ऐसे कुछ भक्त हुए हैं जो मरकट योनि जिन्होंने धारण की हो, विशेष करके वृंदावन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध है। तो ऐसे जो भक्त हैं इन भक्तों को भी विष्णु मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई है महाभागवतों की कृपा से, महाभागवतों के अनुग्रह से। तो चाहे यह विष्णु दीक्षा मानव योनि में प्राप्त हुई हो चाहे और किसी योनि में प्राप्त हुई हो, यदि कोई व्यक्ति विष्णु दीक्षा को प्राप्त कर लेता है, प्रामाणिक संप्रदाय में वह दीक्षा होनी चाहिए, फिर ये दूसरी शर्त इसमें रखी गई है। इसलिए तो पद्म पुराण में और भी एक स्थान पर कहा गया है कि संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रास्ते निष्फलामतः, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फलामतः, जो संप्रदाय में जिन मंत्रों को नहीं ग्रहण किया गया है, संप्रदाय धारा के अनुसार, संप्रदाय विचारधारा, संप्रदाय परंपरा के अनुसार, संप्रदाय प्रणाली के अनुसार जिन मंत्रों की दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है, हमने ऐसे गुरु से इन मंत्रों को प्राप्त किया है जो कि किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं है, जो स्वयं अपने आप गुरु बन चुका है। जिस तरह से आज भी जो है एक पंचम मूल जगत गुरु प्रकट हुए हैं भारत में, चार जगत गुरु तो थे ही, चार वैष्णवाचार्य तो थे ही, श्रीपाद निंबार्क, श्रीपाद मध्व, श्रीपाद विष्णु स्वामी एवं श्रीपाद रामानुज, अभी एक पांचवें मूल जगत गुरु प्रकट हो रहे हैं जिनका विज्ञापन भारत के बड़े बड़े जो समाचार पत्र हैं उनके मुख पृष्ठ पर अर्ध भाग को घेर कर आ रहा है, ये पंचम जगत गुरु है। तो इस प्रकार से ये जो पंचम जगत गुरु है, और इस प्रकार से न जाने कितने जगत गुरु है, लेकिन ये जो पंचम जगत गुरु है इनकी विशेषता ये है कि ये अपने आप को उन चार आचार्यों की श्रेणी में रख रहे हैं, और अपने विज्ञापनों में ये लिखते हैं, उन चार आचार्यों का चित्र भी देते हैं, उनका नाम भी देते हैं, और पश्चात कहते हैं कि अब पांचवा मैं हूं उनके पश्चात। तो इस प्रकार से अभी ये पंचम जगत गुरु की समाधि भी वृंदावन में बन रही है, अरबों रुपए के खर्च से हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के आगे ही उसी पंक्ति में बड़े बड़े जो है वो दिखाई देते हैं, जो क्रेन जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये सब पंचम गुरु है जिन्होंने इतना व्यभिचार किया है कि उतना व्यभिचार आज तक किसी भी सनातन धर्म के आचार्य ने और गुरु पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ने नहीं किया। तो ऐसे पंचम गुरु जो है जो कि संप्रदाय विहीन होते हैं वे किसी का उद्धार नहीं कर सकते, वे किसी का उद्धार नहीं कर सकते। अतएव संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फलामतः, जिन मंत्रों को बिना किसी प्रामाणिक संप्रदाय का आश्रय ग्रहण किए ग्रहण किया जाता है उन वे मंत्र निष्फल हो जाते हैं। निष्फल करने का अर्थ है वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तो प्राप्ति करा देंगे, लेकिन जो प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति नहीं कराएंगे। क्योंकि कर्मकांड के अनुसार यदि धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की प्राप्ति करनी है तो किसी भी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने की उसमें आवश्यकता होती नहीं है, वो फिर स्मार्त विधि के अनुसार उन मंत्रों के जप के द्वारा उनका फल मिल सकता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना के भी जितने मंत्र हैं, जैसे अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र है, दशाक्षर गोपाल मंत्र है, द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र है, अष्टाक्षर नारायण मंत्र है, और षडाक्षर कृष्ण मंत्र है, ये जितने भी प्रमुख मंत्र हैं भगवान कृष्ण की उपासना के, इनके द्वारा पांच पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और फिर पांचवा प्रेम, भगवत प्रेम। तो धर्म अर्थ काम जो त्रिवर्ग है इनको यदि इन मंत्रों के जप से प्राप्त करना हो तो इन मंत्रों की दीक्षा लेनी पड़ती है, लेकिन वो किसी कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मण से दीक्षा लेनी पड़ती है, और वो स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं अथवा जो कर्मकांडी होते हैं वो वैष्णव संप्रदायों में दीक्षित नहीं होते हैं प्रायः करके।
तो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा न लेकर भी उन मंत्रों की यदि किसी कर्मकांड स्मार्त ब्राह्मण से दीक्षा लेकर उनका जप किया जाए तो धर्म अर्थ काम तो प्राप्त हो सकते हैं और मोक्ष भी कदाचित प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए जो चार वैष्णव संप्रदाय है उनका नामोल्लेख भी स्पष्टतः पद्म पुराण और गर्ग संहिता दोनों ही करते हैं कि श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः चत्वारः क्षिति पावनाः। ये जो चार वैष्णव संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय ही पृथ्वी क्षिति को पावन करने वाले वैष्णव संप्रदाय है। इन संप्रदायों के अनुसार जो दीक्षा ग्रहण की जाए तब उस दीक्षा के द्वारा जो मंत्र का जप करते हैं उसके द्वारा जो पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम है उसकी प्राप्ति हो सकती है। इन संप्रदायों का निर्माण ही तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले नहीं है ये चार वैष्णव संप्रदाय। चार वैष्णव संप्रदायों की मान्यता के अनुसार जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ये तो कपट है, कैतव है। इसलिए धर्मार्थ काम मोक्ष तो इन वैष्णव संप्रदायों में दीक्षित न होकर भी उन मंत्रों के जप से प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से यहां पर कहा कि गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः। जो इन चार वैष्णव में से किसी भी एक वैष्णव संप्रदाय के किसी भी एक प्रामाणिक आचार्य से विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भगवान विष्णु अथवा उनके किसी भी अवतार की प्रतिमा की पूजा में रत रखता है वह वैष्णव अभिहित होता है, वह वैष्णव रूप से अभिहित किया जाता है, वैष्णव रूप से वह व्यक्ति कहा जाता है, उसको जाना जाता है। किनके द्वारा? अभिज्ञाई कई, जो वेद शास्त्रों में निपुण है, जो सत शास्त्रों में निपुण है, जिनको परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान, जो तत्व ज्ञानी है, उन तत्व ज्ञानी विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा अभिज्ञाई है। ऐसे जो लोग हैं जो कि विष्णु मंत्र में दीक्षा लेते हैं, संप्रदाय में दीक्षित हैं और विष्णु की पूजा अर्चा में रत है, उन्हीं को वैष्णव कहा गया है, ऐसे ज्ञानी तत्ववादियों के द्वारा। और इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी हैं वे समस्त अवैष्णव हैं, इतरो अस्माद अवैष्णव, इतर इनके अतिरिक्त जितने भी हैं उनको तत्वज्ञानी विद्वान अवैष्णव मानते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने इसी वैष्णव संप्रदाय में प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में जिनको दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन तथापि जो अपने आप को श्री कृष्ण का अथवा भगवान का भक्त मानते हैं, हरिभक्त का जो अभिमान रखते हैं अपने अंतःकरण में, उनको जो भगवान के शुद्ध भक्त है अथवा जो ज्ञानी तत्व ज्ञानी है वो उनको वैष्णव मानते ही नहीं है, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है प्रामाणिक संप्रदाय में, उनको भले ही ऐसे लोग अपने आप को वैष्णव क्यों न माने, उनको वास्तव में वैष्णव नहीं माना जाता। ये पद्म पुराण का आदेश है, इतरो अस्मात् अवैष्णव। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त हुई है वह वैष्णव कहला सकता है। इसलिए जो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी भी वैष्णव है। इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी इस शब्द के स्थान पर श्रील प्रभुपाद बहुत बुद्धिमतापूर्वक नवदीक्षित शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो दीक्षित ही नहीं है वो तो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं है। जो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित नहीं है वो तो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी ये तो वैष्णवों के तीन भेद हैं, और वो व्यक्ति वैष्णव हो ही नहीं सकता इस पद्म वचन के अनुसार, इतरो अस्माद अवैष्णव, वह व्यक्ति वैष्णव हो ही नहीं सकता है यदि उसको संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है तो। और यदि वो वैष्णव नहीं है तो वैष्णवों की जो तीन श्रेणियां हैं उनमें से जो पहली श्रेणी है कनिष्ठ अधिकारी की, वो उस व्यक्ति में लागू भी नहीं पड़ सकते, वो तो कनिष्ठ अधिकारी से ही निम्न है, वो तो वैष्णव है ही नहीं। कनिष्ठ अधिकारी जो है ये वैष्णव को कहा गया है जिसको दीक्षा प्राप्त है, प्रामाणिक गुरु परंपरा में जो दीक्षा प्राप्त है वह कनिष्ठ अधिकारी है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कनिष्ठ अधिकारी शब्द के स्थान पर नवदीक्षित शब्द का ही प्रयोग करते हैं, जो दीक्षित है वही कनिष्ठ अधिकारी है, यह समझाने के लिए। इसीलिए अब यह जानना आवश्यक हो जाता है कि ऐसा जो नवदीक्षित कनिष्ठ भक्त है उसका लक्षण क्या है। उसके लक्षण का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव के प्रति उपदेश देते हुए कहते हैं
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः।
भगवान श्री कृष्ण की जो अर्चना है अथवा उनका जो अर्चा विग्रह है, यहां पर अर्चा शब्द अर्चा विग्रह के रूप में भी आया है। अर्चा विग्रह को भी अर्चा कहा जा सकता है और अर्चा शब्द स्त्रीलिंग में आता है। संस्कृत भाषा में अर्चा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। तो जब अधिकरणार्थ प्रकट करना हो, सप्तमी विभक्ति का अर्थ प्रकट करना हो तो अर्चायाम रूप बनता है। दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ ग्रामर। तब जो है अर्चायाम रूप बनता है अर्चा शब्द का। जिस प्रकार से कहना हो कि राधा में कृष्ण का निवास है तो क्या कहेंगे, राधा भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। राधा में भी ध के पश्चात आ है, आकारांत शब्द है वो और स्त्रीलिंग में है। इसीलिए जब ये कहना हो कि राधा में कृष्ण का निवास है तो किस प्रकार से रूप बनेगा, राधायाम कृष्णस्य निवास अस्ति अथवा वर्तते अथवा स्यात् अथवा भवति। राधायाम कृष्णस्य निवास, राधा में कृष्ण का निवास है। उसी प्रकार से यहां पर अर्चायाम शब्द का प्रयोग है। अर्चा भी स्त्रीलिंग में है, राधा शब्द की वहां थी। अर्चायाम एव हरये, अर्चा विग्रह में जो श्री हरि को देखता है, अर्चा विग्रह में जो श्री हरि को देखता है, अर्चायाम एव हरये, और उस हरि की जो पूजा करता है श्रद्धा के साथ और आदर के साथ, पूजाम यह श्रद्धये हते। परंतु विशेषता यह है कि न तद भक्तेषु चान्येषु, भगवान श्री कृष्ण के जो तदीय हैं, उनके जो भक्त हैं तदभक्त, उन भक्तों का वह आदर नहीं करता, उन भक्तों में उसकी सम्मान बुद्धि नहीं होती और उन भक्तों को वो साधारण मनुष्य के रूप में देखता है और उन भक्तों की वह अवज्ञा करता है, अनादर करता है, कभी कभी तो निंदा अपमान भी कर देता है। न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। और दूसरी विशेषता कि जो प्राणी मात्र है, भक्तों की बात तो छोड़ दें, जो वैष्णव है जो दीक्षित है उनकी बात तो छोड़ दें, जो प्राणी मात्र है जो जीव मात्र है, उन जीव मात्र में भी उसकी आदर भावना नहीं रहती, क्योंकि वह यह विचार करता है कि भगवान तो केवल अर्चा विग्रह में है। वो यह मानता है कि भगवान केवल अर्चा विग्रह में है, भगवान न उनके भक्तों में निवास करते हैं, जबकि भगवान ने स्पष्ट कहा कि साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। नवम स्कंद में दुर्वासा के प्रति कह रहे हैं वैकुंठ नाथ नारायण कि साधु जो मेरे भक्तगण हैं, जो उत्तम अधिकारी महाभागवत भक्त हैं, उनके हृदय में मैं निवास करता हूं और वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का निवास भगवान अपने भक्तों के हृदय में है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये जो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस भगवद गीता के नवम अध्याय के श्लोक की अपनी सारार्थ वर्षिणी टीका में यह लिखते हैं कि जो साधारण जीव है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो साधारण जीव है, साधारण प्राणी मात्र है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे चेतन में भी स्थावर हो या फिर जंगम हो, जो वृक्ष आदि चेतन है वो स्थावर है और अन्य जितने भी योनियां हैं वे समस्त जंगम है चर अचर। तो ये जितने भी चेतन है अचेतन है जड़ है स्थावर है जंगम है, इस समस्त प्राणियों में भगवान नारायण का निवास है, क्षीरोदक्षाय विष्णु का चतुर्भुज मूर्ति का निवास है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती उस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि यहां पर श्री कृष्ण ने कहा कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं अपने जो अनन्य भक्त हैं उनका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूं। और यहां जो वहन शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहन शब्द का अर्थ है अपने सिर पर धारण करना। संस्कृत भाषा के अनुसार वहन शब्द का अर्थ होता है कोई व्यक्ति यदि किसी बोझ को अपने सिर के ऊपर धारण करता है। आज भी ये प्रथा उत्तर प्रदेश में बहुत देखी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो लोग हैं, वही प्रांत है, अन्य प्रांतों में तो मैं नहीं देख रहा हूं इस प्रथा को, तो वहां पे जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो समस्त जो बोझ होता है उसको सिर के ऊपर लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से इसको जो सिर के ऊपर उठाना है किसी भी सामान को, किसी भी बोझ को, उसी को वहन कहते हैं। वहन का अर्थ हाथ में धारण करना नहीं है। यदि हाथ में धारण करते भगवान भक्त का जो योग क्षेम है, उस योग क्षेम की सामग्री को भगवान हाथ में धारण करते तो धृत शब्द का प्रयोग होता, यहां पे वहन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए विश्वनाथ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने सिर के ऊपर उस टोकरी को रखकर आते हैं और उस टोकरी में अपना भक्त जिन जिन वस्तुओं को उसकी जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है अपने शुद्ध भक्त को, उन उन वस्तुओं को भगवान अपने सिर के ऊपर टोकरी के ऊपर धारण करके लाते हैं। यही वहन शब्द का अर्थ है, नहीं तो वहन शब्द का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। और एक ऐसा कथानक भी है, एक पंडित ब्राह्मण जो कि टीका लिख रहे थे जगन्नाथपुरी में, जिनका नाम था अर्जुन मिश्र, उन्होंने समझा कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की आपने दास भक्तों के लिए अपने सिर के ऊपर टोकरी को वहन करके लाएंगे, तो उन्होंने वहां भी शब्द को काट दिया। जब वो स्नान करने के लिए गए और वापस आए तो देखा कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने यह समाचार दिया कि जब आप चले गए तो एक बालक आया। बालक जो है सांवरा सलोना था, श्याम उसकी कांति थी, श्याम कलेवर था, 5 वर्ष का अति सुकोमल बालक था। उसने कहा कि पंडित जी ने, अर्जुन मिश्र जी ने यह टोकरी में सीधा सामान रख के भेजा है, हे माता आप इसको ग्रहण करके अब रसोई बनाना प्रारंभ करिए, पाक रंधन कार्य प्रारंभ करिए। मैंने उस बालक की छाती के ऊपर देखा तो लाल लाल दाग पड़ा हुआ था, किसी ने उसको चाकू से चीर दिया हो ऐसा लगता था, तीव्र अस्त्र से तीव्र औजार से किसी ने उसकी छाती को, उसके सीने को चीर दिया हो ऐसा लगता था। मैंने पूछा कि एक काम किसने किया, तो उस बालक ने बताया कि अरे तुम्हारे जो पतिदेव हैं, पंडित जी हैं अर्जुन मिश्र, उन्होंने यह किया है। और तत्पश्चात वह ब्राह्मण बालक चला गया। जब अर्जुन मिश्र आए हैं और उनकी पत्नी ने उनको यह संवाद सुनाया है तो अवाक रह गए। तो जाकर देखा उन्होंने उस दिन गीता के उस वहां भी शब्द के ऊपर जो पंक्ति रेखा को खींचा था, जान गए कि ये गीता का श्लोक साक्षात भगवान से अभिन्न है, उनके ऊपर रेखा नहीं खींची है, लाल स्याही से रेखा को खींचा गया था। इसलिए भगवान के शरीर के ऊपर भी रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी लाल रक्त की। जान गए कि भगवान वास्तव में जो कुछ कहते हैं वो सब सत्य है पहला, और दूसरा भगवान स्वयं ही गीता के समस्त श्लोकों के रूप में प्रकट होते हैं। अभिन्न है गीता के श्लोक भगवान से, वाणी वपु से अभिन्न है, इसका ये प्रखर दृष्टांत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां में शंडकार विश्वनाथ चक्रवर्ती करते हैं वहन करना सिर के ऊपर, और वहां पे विश्वनाथ जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में तो समस्त जगत का पालन पोषण करते ही हैं, सत्वगुण को धारण करके, जैसे ब्रह्मा रजोगुण को धारण करके सृष्टि करते हैं और शिव संहार करते हैं, वैसे विष्णु पालन करते हैं। तो फिर यह विशेष रूप से कहने की क्या आवश्यकता थी कि मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं जो मेरे भक्त हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनका। विशेष रूप से कहने का तात्पर्य यह है, विश्वनाथ समझाते हैं कि विष्णु नारायण के रूप में तो मैं प्राणी मात्र का पालन पोषण करता हूं, अभक्त भक्त सभियों का पालन पोषण करता हूं, दैव आसुर दोनों का ही पालन पोषण करता हूं, लेकिन स्वयं अपना ये जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है उस श्याम सुंदर रूप से तो केवल मेरे जो अनन्य भावासक्त भक्त हैं उनका ही पालन पोषण करता हूं। और वहां पर विश्वनाथ जी कहते हैं कि यद्यपि विष्णु और नारायण के रूप से श्री भगवान समस्त प्राणी मात्र के हृदय में अवस्थित होकर उनका पालन करते हैं, लेकिन उनके जो अनन्य भक्त हैं श्री कृष्ण के, उनके हृदय में श्री कृष्ण स्वयं द्विभुज मूर्ति को भी प्रकट करते हैं। ये जो चतुर्भुज क्षीरोदक्षायी परमात्मा की मूर्ति है वो तो रहती ही है भक्त के अंतःकरण में, भक्त के हृदयावकाश में, साक्षी के रूप में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना जो वृंदावन बिहारी का द्विभुज श्याम सुंदर त्रिभंग ललित वेणु निनाद करने वाला रूप है, उस रूप को भी प्रकट करते हैं और उस रूप के द्वारा भी उस अपने अनन्य भक्त के अंतःकरण में निवास करते हैं। इसलिए जो कृष्ण के भक्त हैं उन कृष्ण भक्तों के हृदय में चतुर्भुज रूप में भी है और द्विभुज रूप में दो तरह से निवास करते हैं भगवान, क्योंकि चतुर्भुज रूप से तो सामान्य व्यक्तियों का पालन पोषण होता है, द्विभुज मूर्ति से अपने जो शुद्ध भक्त है उनका पालन पोषण करता है, इस सिद्धांत को स्थापित किया। तो इस प्रकार से जो प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र में भी जो ये समझते हैं कि प्राणी मात्र में भगवान का निवास नहीं है, भगवान का निवास तो केवल अर्चा विग्रह में है, मूर्ति में है। और जो यह विचार करते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन शुद्ध भक्तों के हृदय में भी भगवान का निवास नहीं हो सकता, ऐसी विचारधारा वाले जो भक्त हैं उनको प्राकृत भक्त कहा गया है। ऐसी विचारधारा वालों को प्राकृत भक्त कहा गया है। और यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्री शिव पार्वती के संवाद में पद्म पुराण में कहते हैं कि आराधनानां सर्वेषां वैष्णवाराधनं परम तस्मात् परदरं देवे तदीयानां समर्चनम्। समस्त प्रकार की अन्य देवताओं की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना, उससे भी श्रेष्ठतर परतर है आराधना उनके भक्तों की, तदियों की जो आराधना है, क्योंकि तत् शब्द के द्वारा भगवान की सूचना मिलती है। तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म हरिः ओम तत्सत् इत्यादि जो मंत्र है वेदों के, उनमें तत् शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो तत् शब्द का प्रयोग परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अर्थ में हुआ है। इसलिए तत् शब्द के द्वारा, और भगवान ने गीता में भी कहा कि ओम तत्सदिते ब्रह्मणस्त्रिविदः स्मृतः, भगवान ने कहा कि तत् शब्द के द्वारा जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, भगवान है, वो ही जाना जाता है। इसलिए तत् का अर्थ हुआ भगवान, और तत् से जो संबंधित है सेवा के द्वारा, सेवा के द्वारा जो तत् के साथ संबंधित है उन्हीं को तदीय कहा जाएगा, अर्थात भगवान के भक्त। और ऐसे तदियों की जो आराधना है वो विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ मानी गई, ये पद्म पुराण का वचन। और भी ऐसे अनेक सारे वचन हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं पुराणों में कि प्रथमन्तो गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनम् कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्नोति ह्यन्यथा निष्फलं भवेत्। प्रथमन्तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनम्। सर्वप्रथम साधक का, भक्त का कर्तव्य है कि वह अपने गुरुदेव की पूजा करे और तत्पश्चात मेरा अर्चन करें। प्रथमंत गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनम् कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्नोति। और इस भांति पूजा करने पर ही भक्ति मार्ग की जो सिद्धि है, जो प्रयोजन है, कृष्ण के चरणारविंदों में प्रेम प्राप्ति, उस प्रेम प्राप्ति रूपी सिद्धि को उस पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। और यदि ऐसा नहीं करता है, यदि पहले मेरी पूजा करता है और तत्पश्चात अपने गुरु की पूजा करता है तो क्या होता है, ही अन्यथा निष्फलं भवेत्। उसका जो प्रयोजन है वो निष्फल हो जाता है, उसको कृष्ण के चरणामुजों में प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव श्रील प्रभुपाद ने यह विधि, यह मर्यादा स्थापित की है इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कि सर्वप्रथम जब हम जागृत होते हैं ब्राह्म मुहूर्त की पावन वेला में, अरुणोदय के पावन काल में, उस समय मंगल आरत्रिक में जो सर्वप्रथम गायन होता है वह गुर्वाष्टकम का होता है। सर्वप्रथम गायन गुर्वाष्टकम का होता है। गुर्वाष्टकम का गायन करने का तात्पर्य ही यह है कि सर्वप्रथम गुरु की पूजा और तत्पश्चात भगवान की पूजा। लेकिन गुर्वाष्टकम का गायन करते समय नीराजन जो आरत्रिक है, विविध उपचारों के द्वारा जो आरत्रिक है वो तो भगवान की उतारी जाती है, गुरु की क्यों नहीं उतारी जाती, यह प्रश्न उठता है स्वाभाविक। ऐसा विधान इसलिए किया है श्रील प्रभुपाद जी ने क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्ति, जिस व्यक्ति की भक्ति जैसे देवता में है, जैसे भगवान में है, उसी प्रकार की पराभक्ति यदि व्यक्ति की अपने गुरु में भी हो तो यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिस प्रकार की पराभक्ति, जिस प्रकार का प्रेम साधक भक्त का, जीव का भगवान में होता है, देव में होता है, उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार की भक्ति यदि अपने गुरु में भी हो तभी तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ति महात्मनः। तभी जो वेद पुराण शास्त्रों का वास्तविक मर्म है, सारांश है, अर्थ है, तात्पर्य है, भावार्थ है, बोध है, वह प्राप्त होता है उस जीव को, नहीं तो वो शास्त्रों के वास्तविक मर्म को नहीं समझ सकता। ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद का, वेदों का, श्रुति का भी ऐसा ही कहना है। और इधर जो स्मृति है, पुराण है, श्रीमद् भागवत, उसका भी यही कहना है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं भागवत में कि आचार्यं माम विजानीयान् नाव मन्येत कर्हिचित् नमर्त्यबोध्यासूयेत् सर्व देवमयो गुरुः। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, तो आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, आचार्य माम विजानियाम, गुरु को, आचार्य को, जो शुद्ध वैष्णव है, भागवत है, उत्तम अधिकारी जो महाभागवत शुद्ध वैष्णव है, जो कि आचार्य की पदवी पर आसीन है, उस आचार्य को साक्षात मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है, वैसा समझे, वैसा भाव रखे उसमें। तो यहां पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल गुर्वष्टकम में समझाते हैं, उन्होंने ही तो गुर्वष्टकम की रचना की है, वो गुर्वष्टकम में समझाते हैं कि भगवान ने जो ये कहा है भागवत में है कि गुरु मैं ही हूं, इसका तात्पर्य क्या है? क्या वास्तव में भगवान ही गुरु है? नहीं। इसका तात्पर्य समझाते हुए कहते हैं कि साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। साक्षात् हरित्वेन, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः एवं सद्भिः, समस्त जो भगवान के भक्त हैं, जिनको सात्वत कहा जाता है, उन सात्वत भक्तों के द्वारा भी ऐसा ही कहा जाता है, उनकी भी ऐसी ही भावना है, उनकी भी ऐसी ही मान्यता है। और उनके साथ साथ जितने भी वेद पुराण आगम निगम इत्यादि सत शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति इत्यादि जो सत शास्त्र हैं, उनकी भी ऐसी ही मान्यता है। क्या मान्यता है? कि जो गुरु है वो साक्षात हरि ही है, हरित्व, साक्षात जो हरित्व है वो हरित्व ही गुरु में प्रकाशित होता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रियैव तस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। लेकिन ये जो कहा गया है शास्त्रों में कि श्री गुरु श्री हरि ही है, और भगवान ने स्वयं अपने निजी मुख से भागवत में कहा कि गुरु को मुझसे अभिन्न रूप में मानना चाहिए, तो इस प्रकार से श्री हरि और श्री गुरु में जो अभिन्न दृष्टि है, उस अभिन्न दृष्टि का वास्तव में तात्पर्य क्या है? तो उस अभिन्न दृष्टि का वास्तव में तात्पर्य समझाते हुए कहते हैं कि किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, लेकिन श्री गुरु स्वयं श्री हरि नहीं है। यदि श्री हरि रासलीला कर सकते हैं तो श्री गुरु अपने आप को श्री हरि बताकर, श्री हरि मनवाकर अपने शिष्यों को यह नहीं कह सकता कि मैं भी रासलीला कर सकता हूं जैसे कि ये पंचम जगत गुरु कर रहे हैं इस समय। वो इसी श्लोक की गलत व्याख्या कर रहे हैं। यही जो भागवत का श्लोक है आचार्य माम विजानीयान, वो कहते हैं कि भगवान ने यह नहीं कहा यहां पर कि गुरु को मुझसे निम्न समझो। भगवान ने यहां पर यह भी नहीं कहा कि गुरु को मत समान, मेरे समान समझो। भगवान ने यह भी नहीं कहा यहां पर कि गुरु को मेरे से ऊपर बड़ा समझो। भगवान ने यह कहा कि गुरु मैं हूं ऐसा समझो, माम विजानीयान। अब यहां पर शास्त्रार्थ चल सकता है कई दिनों तक, माम विजानीयान, कि कहते हैं कि गुरु मेरे से कनिष्ठ है ऐसा मत समझो, मेरे से निम्न है ऐसा मत समझो, मेरे समान है मत समान ऐसा भी मत समझो, मेरे से उत्तम है ऐसा भी मत समझो, साक्षात मैं ही गुरु हूं ऐसा समझो, माम मैं ही हूं, माम विजानीयाम, ऐसा ज्ञान रखो। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, साक्षात भगवान है, अतएव जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र को रास लीला करने का अधिकार प्राप्त है, वैसे हमको भी इस प्राकृतिक जगत की रमणियों के साथ अवैध रूप से व्यभिचार करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा कहते हैं। बताइए, लेकिन उनकी यह जो व्याख्या है वो गलत है। वास्तव में यहां पर भगवान कह रहा है कि माम विजानियान, गुरु को मैं ही हूं ऐसा मानो। जिस प्रकार 100 में 10 भी आता है, जीव गोस्वामी संभव प्रमाण को सिद्ध करते हैं। संभव प्रमाण क्या है पहले तो यह समझना पड़ेगा। 100 में 10 भी आता है, 100 की जो संख्या है उसमें 10 भी है। यदि हमारे पास 1 शत रूपक है, 100 रुपये है, तो यह भी तो माना जा सकता है कि हमारे पास 10 रुपये भी हैं। यदि 100 रुपये है तो 10 रुपये भी है हमारे पास, ये संभव प्रमाण है। उसी प्रकार से गुरु तो वास्तव में भगवान से भी ऊंचा है। वो लोग जो ये कहते हैं कि गुरु भगवान से ऊंचा नहीं है, गुरु भगवान ही है, वो लोग तो गलत है। हमारी मान्यता में तो गुरु भगवान से भी ऊंचा है, तो ऊंचाई में समानता भी तो है, ऊंचाई में समानता भी तो है। यदि ऐसा कहा जाए कि 10,000 फुट ऊंचा है कोई व्यक्ति, तो यह भी तो कहा जाएगा कि वो 100 फुट ऊंचा है। अरे 100 फुट तो ऊंचा है, तभी तो वो 10,000 फुट ऊंचा बना है। यदि वो 100 फुट ऊंचा नहीं होता, यदि वो 99 फुट ही ऊंचा होता, तो वो 10,000 फुट ऊंचे नहीं बन सकता। वो 100 फुट ऊंचा है, 10,000 फुट ऊंचा है, इसका मतलब कि 100 फुट भी ऊंचा है। तो ये संभव प्रमाण यहां पे लगता है जीव गोस्वामी का। उसी प्रकार से जो गुरु है उसकी स्थिति तो भगवान से भी उत्कृष्ट है। तो यदि भगवान से भी उत्कृष्ट उसकी स्थिति है, तो भगवान के ही समान उसकी स्थिति है, या भगवान की जो स्थिति है वैसी ही उसकी स्थिति है, ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। यदि भगवान से भी वो उत्कृष्ट है तो वो भगवान ही है, ये भी तो सिद्ध हो जाता है। कैसे वो भगवान से ऊंचा है? वो भगवान के समान भी नहीं और स्वयं भगवान भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो आदि पुराण में स्वयं अपने मुख से कहा है कि, और यहां पर भागवत में भी तो कहा है कि आत्मयोनिर्न शंकर, मेरी आत्मा भी मुझे जितनी प्रिय नहीं है। और तो बात क्या, यथा गोपी जनो मम, आदि पुराण में, पद्म पुराण में और श्रीमद् भागवत में कई सारे ऐसे श्लोक प्राप्त हैं कि जिनमें स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं कि शिव ब्रह्मा आदि भी मुझे उतने प्रिय नहीं। भागवत में भी ऐसे 2-3 श्लोक आए हैं कि शिव ब्रह्मा आदि भी मुझे उतने प्रिय नहीं। अरे और तो क्या, मेरी जो अर्धांगिनी और मेरी जो अंग स्वरूपा, जो कि श्रीवत्स चिन्ह के रूप में मेरे अंग के ऊपर ही साक्षात विराजित है, मेरी शरीर स्वरूपा, अंग स्वरूपा जो लक्ष्मी है, वो भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। अरे और तो क्या, मेरी जो आत्मा है, स्वयं अपनी आत्मा, स्वयं मैं भी अपने आप को उतना प्रिय नहीं हूं, मेरी आत्मा भी जो है मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय हे उद्धव तुम मेरे हो, ऐसा भागवत ने कहा। और वहां पर आदि पुराण में कह रहे हैं कि जितनी प्रिय मेरी जो गोपी जन है वो मुझे है, और फिर वहां आदि पुराण में कहा कि हे अर्जुन जितने प्रिय तुम मुझे हो उतनी प्रिय तो मेरी आत्मा भी मुझे नहीं है, यानी कि स्वयं मैं भी अपना उतना प्रिय नहीं हूं, अपने लिए उतना प्रिय नहीं हूं जितना कि तुम हो, स्वयं मैं भी अपने लिए उतना प्रिय नहीं हूं। यदि गुरुदेव को साक्षात भगवान मान लिया जाए, तब तो गुरुदेव भगवान या भगवान की आत्मा हो गए। और यहां पर पुराणों में और शास्त्रों में तो भगवान यह कहते हैं कि मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है कि जितने मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। इसलिए गुरु को साक्षात भगवान मानने से भी अधिक ऊंची विचारधारा यह है कि गुरु भगवान को उनकी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। वो उनकी आत्मा नहीं है, आत्मा से भी अधिक प्रिय है, आत्मा नहीं है गुरु। यहां पे मान शंडकार के लिए मानना कि गुरु ही भगवान है, भगवान की आत्मा और गुरु की आत्मा एक है, एक ही व्यक्ति है गुरु और भगवान, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अरे आत्मा तो उतने प्रिय है ही नहीं, स्वयं भगवान अपने आप को उतने प्रिय नहीं है कि जिनको कि जितना उनका जो शुद्ध भक्त गुरु है, जो कि उनकी नाम महिमा का भक्ति का प्रचार कर रहा है, वो उनको उतना प्रिय है। इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया और यहां पर भी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृत्तमः, कि इसीलिए समस्त मनुष्यों में न भविष्य में उतना कोई प्रिय नहीं होगा, और पहले भी पूरा भूमि पहले भी प्राचीन काल में भी ऐसा इतना मेरा प्रिय कोई नहीं हुआ कि जितना प्रिय मेरा वो भक्त है जो कि मेरी भक्ति का मेरी महिमा का प्रचार करता है, और विशेष करके ये जो गीता का ज्ञान है उसका प्रचार करता है। इस गीता के ज्ञान का जो प्रचार करता है उस व्यक्ति से अधिक प्रिय न भविष्य में हुआ है न भूतकाल में हुआ है। और भगवान ने भागवत में आदि पुराण में और पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कई बार कहा है अनेक अनेक भक्तों के प्रति कि जितने तुम मेरे प्रिय हो उतनी प्रिय तो मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है। इसलिए यदि गुरु को भगवान की आत्मा मान लिया जाए कि भगवान की आत्मा और गुरु की आत्मा एक ही है, गुरु और भगवान एक ही है, एक ही व्यक्ति है, तब तो गुरु का जो महत्व है वो बहुत घट गया। अरे हम तो इस बात को मानने वाले थोड़े हैं, हम तो इस बात को मानने वाले हैं कि गुरु भगवान उनकी अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। इसलिए इन लोगों की जो व्याख्या है दुष्ट लोगों की, जो ये कहना चाहते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं, भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान यदि रासलीला कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो मूर्ख है। और वो प्रिय क्यों बना है, जो भक्त है जो गुरु है वो प्रिय क्यों बना है इतना गोविंद का, क्योंकि जो गुरु है वो भगवान का भक्त है। इसीलिए यदि वो स्वयं भगवान बनने का प्रयत्न करता, स्वयं भगवान की तरह जो है गोप्रमणियों के साथ भोग करने का प्रयत्न करता, तो उसकी जो हालत है वो पौंड्रक के समान हो जाती। पौंड्रक ने भी तो चार भुजाएं धारण कर ली थी, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध द्रष्टव्य है, उसने भी तो चार भुजाएं धारण कर ली थी, लेकिन उसका नाश जो है भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश वासुदेव ने कर दिया। इसीलिए भक्त का भक्तित्व तभी सिद्ध हो सकता है जो जब वो भगवान की दासता स्वीकार करे, जब वो भगवान की दासता स्वीकार करे, अपना निजी इंद्रिय भोग छोड़कर श्री हरि की इंद्रिय तृप्ति में लग जाए, अपनी इंद्रियों के द्वारा अपनी हृषिकों के द्वारा हृषिकेश माधव की मधुसूदन की जब उपासना करे, तभी भक्त का भक्तित्व और गुरु का गुरुत्व सिद्ध हो सकता है। और जब उसका गुरुत्व और भक्तित्व सिद्ध होता है तभी वह श्री कृष्ण को उनकी अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय बनता है। यदि वह भक्त नहीं है, यदि वह कृष्ण का दास नहीं है, तो वह श्री कृष्ण को अपनी आत्मा से प्रिय कैसे हो सकता है, आत्मा से भी अधिक प्रिय। श्री कृष्ण को जो उनके भक्त अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय है वो क्यों, क्योंकि वह भक्त है इसीलिए, उनमें भक्तित्व है इसीलिए, दासत्व है इसीलिए। यदि दासत्व ही नहीं है, भक्तित्व ही नहीं है, सेवा का भाव ही नहीं है, स्वयं अपने आप को श्री हरि मान रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है। और यदि भक्ति नहीं है तो फिर अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय नहीं है वो उनको। इसीलिए जितने भी पाषंडी लोग हैं उन पाषंडी लोगों को जिस प्रकार से गिदड़ पलायन कर जाते हैं सिंह शार्दूल मृगेंद्र के नाद को सुनकर, उसी प्रकार से इन पाषंडी लोगों को भी पलायन करना ही पड़ेगा एक न एक दिन। तो इस प्रकार से यहां पर कहा गया है कि जो गुरु है अथवा जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो तो भगवान को उनकी अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय है, आत्मा से भी अधिक प्रिय है, तो उनको कम से कम उनसे अधिक भी न माने तो उनके समान माने, तो ये तो बहुत ही निम्न है। भगवान ने जो कहा है कि आचार्य माम विजानीयाम, आचार्य को साक्षात मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है ऐसा माने, ये तो बहुत ही निम्न स्तर है। गुरु को वास्तविक कौन से स्तर पे देखना चाहिए, वास्तविक जो दृष्टिकोण है गुरु को और भगवान के शुद्ध भक्तों को देखने का, वो तो है कि गुरु भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इस दृष्टिकोण से देखना है गुरु को। इसीलिए यहां पर पुराण में जो कहा गया है कि प्रथमंत गुरुम पूज्यम, अरे प्रथम उपासना उसकी होती है जो अधिक महत्वपूर्ण हो, प्रथम उपासना उसकी होती है जो अधिक महत्वपूर्ण हो। इसलिए प्रथमंत गुरुम पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम, यदि मुझसे अधिक महत्वपूर्ण कोई न भी मान सके गुरु को या शुद्ध भक्त को, तो कम से कम मैं ही हूं या मेरे ही समान है ऐसा तो माने। इसलिए आचार्य मम विजानीयम कहा है। लेकिन जो प्राकृत भक्त होते हैं वो तो इस तरह से भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। जो प्राकृत भक्त है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, वो तो इस प्रकार से भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। और यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, दस निमेश और लगेंगे क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ और गहन विषय है, और वैसे भी भोजन तो करते ही आ रहे हैं कितने वर्षों से कितने दिनों से, थोड़ी हरिकथा का भी श्रवण कर लेना चाहिए। तो पंच निमेश और लेता हूं। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो प्रचारक है अपने गुरु की तो बात जाने दीजिए, जो प्रचारक है उन प्रचारकों में भी ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनकी पूज्य बुद्धि नहीं होती, आदर बुद्धि नहीं होती। और वहां पर श्रील प्रभुपाद ने प्रचारक के अर्थ को समझाते हुए कहा है कि जो पुस्तक वितरण करते हैं, ये कहा है कि जो पुस्तक वितरण करते हैं ऐसे जो प्रचारक हैं उन प्रचारकों को ये महत्व नहीं देते, ये कनिष्ठ अधिकारी जो कि मंदिरों में निवास करते हैं या फिर जिनकी ऐसी बुद्धि हो गई है कि केवल अर्चा विग्रह जो कि मंदिर में प्रतिष्ठित है उसी में भगवान है, ऐसी जिनकी बुद्धि हो गई है वो ऐसे प्रचारकों का भी सम्मान नहीं करते। तो यहां पर प्रचारक किनको कहा जाए कि जिनकी अवज्ञा करने से भक्त को कनिष्ठ माना जाता है, वैसे जो प्रचारक है वो किनको माना जाए, ये बड़ा प्रश्न है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्रील प्रभुपाद स्वयं ही लिखते हैं अपनी जो व्याख्या है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के छठवें और सातवें श्लोकों की जो अपनी व्याख्या है उसमें प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं कि ये प्रचारक किसको माना जाए कि जिसकी अवज्ञा करने से भक्त को कनिष्ठ कहा जाता है। तो ऋषय उच हो त्वया खल पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदवेदां श्रेष्ठा भगवान् पादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। यहां पर शौनक ऋषि सूत गोस्वामी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं और उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कलयुग के चार प्रमुख पाप हैं, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। और यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो निष्कलंक चरित्र वाला न हो और उपर्युक्त पापों से रहित न हो उसे व्यासासन पर बैठाया न जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए अभी तो समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य या गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहां पर आचार्य अथवा जो प्रचारक है उसका वर्णन किया गया। और अग्रिम श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और कहते हैं कि व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र छह विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जैमिनी, पतंजलि, गौतम, कणाद इत्यादि जितने भी ऋषि हैं और उनके द्वारा रचित जो षड दर्शन है, न्याय शास्त्र, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेद व्यास का वेदांत दर्शन यानी कि ब्रह्म सूत्र, इन छहों दर्शनों में जो निष्णात हो, समस्त 18 पुराणों में जो निष्णात हो, चार वेद, 108 उपनिषदों का जिसको ज्ञान हो, महाभारत और वाल्मीकि रामायण का जिसको ज्ञान हो और अपने संप्रदाय के अनुसार अपने सांप्रदायिक आचार्यों के ग्रंथों का भी जिसको ज्ञान हो, वही व्यासासन पर बैठने का ही साहस कर सकता है, हिम्मत कर सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा। तो जो वास्तविक प्रचारक है उसमें समस्त लक्षण होने चाहिए। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी के बहुत सारे लक्षण हैं, प्रभुपाद जी ने समस्त लक्षणों को नहीं बताया है इस वर्तमान के श्लोक के तात्पर्य में, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी के बहुत सारे लक्षण हैं। प्रभुपाद जी ने केवल संकेत किया है कि जो प्रचारक होते हैं इनकी ये अवज्ञा करते हैं, उनकी ये निंदा करते हैं, ये कनिष्ठ अधिकारी, लेकिन कनिष्ठ अधिकारियों के बहुत सारे लक्षण हैं। हमारी संस्था में ही बहुत सारे ऐसे कनिष्ठ अधिकारी हैं जो यह विचार करते हैं कि वर्तमान आचार्य के ग्रंथों को छोड़कर पूर्ववर्ती आचार्यों की ग्रंथों का अध्ययन न किया जाए और जो वेद पुराण उपनिषद है उनका अध्ययन बिल्कुल न किया जाए। ऐसे विचारधारा वाले कनिष्ठ अधिकारी हमारी संस्था में विद्यमान है, जबकि श्रील प्रभुपाद इसी प्रथम स्कंद का जो प्रथम श्लोक है इस प्रथम श्लोक की जो विस्तृत व्याख्या उन्होंने की है उसके अंतिम पन्ने पर क्या लिखते हैं, उसके अंतिम पन्ने पर श्रील प्रभुपाद जी भी यही लिखते हैं कि जो वास्तव में श्रीमद् भागवत के रहस्य को जानना चाहता है उसे यहां पे उन्होंने लिखा भी है। हां ऐसी परिस्थिति विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। गंभीर छात्र को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सबका अध्ययन करें। लेकिन हमारी संस्था में से बहुत सारे कनिष्ठ अधिकारी हैं जो विशुद्ध प्रचारक है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों का ज्ञान है, जिनको वेद पुराण उपनिषदों का ज्ञान है, उनकी लोग अवहेलना करते हैं और ये कहते हैं कि केवल वर्तमान आचार्य के ग्रंथों का ही अध्ययन अध्यापन किया जाए। ये सब कनिष्ठ विचारधारा है, ये सब कनिष्ठ विचारधारा है, इसका कोई ठोस आधार नहीं है कहीं पर। और इसी प्रकार से कनिष्ठ विचारधारा बहुत प्रकार की है। जो भगवान हरि के शुद्ध प्रचारक हैं वो कई बार प्रचार के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे मंगल आरत्रिक में नहीं आ पाते हैं अथवा गुरु पूजा के समय नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो ये विचार करते हैं कि अरे ये तो बहुत ही निम्न स्तर पर है, इनकी साधना तो कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कनिष्ठ अधिकारी हैं जो ये विचार करते हैं कि जहां पर अर्चा विग्रह प्रतिष्ठित हो वहां पर जो निवास करे वही प्रचार कर सकता है, वही वास्तव में शुद्ध प्रचारक है, उन्नत स्तर का प्रचारक है। जिसका निवास मंदिर में नहीं है, जो बाहर रहकर प्रचार करता है, उसका जो प्रचार है वो कनिष्ठ स्तर का है। ये समस्त कनिष्ठ विचारधारा है, ये समस्त कनिष्ठ विचारधारा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी कहते थे, अब प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है कि जब मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के संग में जाता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मुझको बहुत घनिष्ठता से मेरे साथ बर्ताव करते थे और मेरे जो गुरु भ्राता लोग हैं यानी कि जो खास करके जो सन्यासी थे गौड़ीय मठ के उन लोगों को बहुत ही ईर्ष्या आती थी कि श्री सरस्वती प्रभुपाद तो हमारे साथ भी इतनी घनिष्ठता नहीं रखते जबकि हम उन्हीं के मठ में रहते हैं और ये बाहर रहने वाला कोई गृहस्थ है, प्रयाग फार्मेसी को खोल के बैठा है, इसके साथ जो इतनी घनिष्ठता क्यों बरत रहे हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति क्या है, वास्तव में प्रचारक कौन है, इसको समझ पाना बड़ा कठिन काम है। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो नहीं समझ पाएंगे, वो तरह तरह की अटकलें लगाते हैं, अरे इनका तो निवास मंदिर में नहीं है, अरे ये तो मतलब किसी भी कारणवश यदि प्रचार कार्य में संलग्न हो जाने पे कोई मंदिर के दैनिक कार्यक्रमों में नहीं भाग ले सकता तो कहने लगते हैं कि अरे ये तो जो है प्रचारक ही नहीं है, इनका तो आचरण ही कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को ये लेना समझना चाहिए कि जो प्रातःकालीन कार्यक्रम है मंगल आरती का उसमें वो कभी ना आए, ये उसका अर्थ नहीं है। लेकिन प्रचार के कार्यक्रम में इतना अधिक संलग्न हो जाए कि प्रचार के लिए इतनी अधिक तैयारी करनी पड़े कि कहीं कदापि जो है दैनिक कार्यक्रम में ना आ पाए, तो प्रचार क्या है, वो गुरु का ही तो आदेश है, गुरु के ही तो आदेश का पालन हो रहा है वहां पर, तो कैसे उस व्यक्ति के संबंध में ये कहा जा सकता है कि वो प्रचारक नहीं है और वो गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं कनिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, ये समस्त अटकलें भ्रांत है, वो स्वयं भ्रांत है, इसीलिए उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश है वो उपदेश भी भ्रांत है और जो लोग उनके उपदेशों को स्वीकार करते हैं वे लोग भी भ्रांत है। और कुछ मैं नहीं कहना चाहता इस विषय में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर इतना स्पष्ट कह दिया है कि जो मंदिर में अर्चा विग्रह में ही भगवान को देखते हैं वो लोग जो वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं उनकी अवज्ञा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और ऐसे पुरुषों को न अर्थदा, ऐसे पुरुषों को किसी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। अर्थ का यह मतलब है जो भगवत प्रेम रूपी पुरुषार्थ है, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, गोल, अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन, वो जो भगवत प्रेम रूपी पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ की उन लोगों को प्राप्ति नहीं हो पाती क्योंकि वो पुरुषद्विषाम, वो लोग भगवान के शुद्ध भक्तों से ईर्ष्या करने वाले होते हैं, प्रचारकों से ईर्ष्या करते हैं और यद्यपि वो कितने भी षोडशोपचार से या पंचोपचार से या पंचाशतोपचार से कितने भी बड़े साज सामान के साथ वो भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा क्यों न करे, श्रद्धा के साथ भी यदि पूजा क्यों न करे, उनके द्वारा की गई ये जो भक्ति है जब तक वो अपने एटीट्यूड को, भाव को नहीं बदलेंगे तब तक उनके द्वारा की जाने वाली जो भक्ति है, जब तक वो भगवान के भक्तों से और प्रचारकों से ईर्ष्या का भाव रखेंगे या ये समझेंगे कि ये प्रचारक तो कनिष्ठ स्तर पर है, हम वास्तव में उनसे ऊंचे हैं, तो ये सभी जो लोग हैं जो इस प्रकार से विचार करते हैं, ये सभी कनिष्ठ अधिकारी हैं, और ये जब तक उन्नत स्तर पे नहीं आते, जब तक भगवान के शुद्ध भक्त और प्रचारकों का सम्मान नहीं करते, तब तक इनकी प्रगति की कोई संभावना नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो निम्न अवस्था में ही पड़ा रहेगा, तात्पर्य प्रगति की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे गो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। क्षमा चाहता हूं अधिक समय लिया है।